एकत्र ज्ञान गोष्ठी।
आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में।
ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं।
जी हाँ, एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म, एक ऐसी किताब जिसने वाकई दुनिया को देखने का नजरिया बदलने में आप कह सकते हैं एक अहम भूमिका निभाई है।
बिल्कुल। और देखिए, ये किताब आई तो थी 1978 में, पर इसकी बातें मुझे लगता है आज भी उतनी ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी महसूस होती हैं।
सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम दूसरी संस्कृतियों को और खासकर पश्चिम ने पूर्व को कैसे देखा है, कैसे समझा है।
हाँ, और कैसे ये देखना सिर्फ देखना नहीं है बल्कि इसमें कहीं ना कहीं ताकत का खेल भी शामिल है।
बिल्कुल, ताकत का खेल। ये हम बनाम वे वाली सोच, ये कैसे बनती है, कौन इसे गढ़ता है, और फिर इसका असर हमारी राजनीति पर, हमारे मीडिया पर, यहाँ तक कि हमारी अपनी रोजमर्रा की सोच पर क्या पड़ता है, ये सारे सवाल सईद उठाते हैं।
तो चलिए आज इसी जरूरी किताब की गहराइयों में उतरते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं।
जरूर।
शुरुआत कहाँ से करें, लेखक से?
हाँ, वहीं से करते हैं। ये एडवर्ड डब्ल्यू सईद थे कौन और क्या बात थी जो उनके नजरिए को इतना खास बनाती है?
देखिए, एडवर्ड सईद 1935-2003 का नाम 20वीं सदी के बड़े बुद्धिजीवियों में शुमार होता है। वो एक मशहूर साहित्य आलोचक थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, पर उनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है।
सही कहा आपने, उनकी जो पृष्ठभूमि थी वो काफी अनोखी थी।
जी, उनका जन्म जेरूसलम में हुआ था, एक अरब ईसाई परिवार में, वो भी उस जमाने में जब वो ब्रिटिश मैंडेट वाला फिलिस्तीन था।
और उनकी पढ़ाई हुई मिस्र के ब्रिटिश औपनिवेशिक स्कूलों में, और फिर वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। तो आप सोचिए, वो एक ही वक्त में कितनी अलग अलग दुनियाओं का हिस्सा थे।
हाँ, और शायद इसी वजह से उन्हें एक बहुत ही, कह सकते हैं, जबरदस्त नजरिया मिला।
बिल्कुल, वो पश्चिमी अकादमिक जगत के तौर तरीके, उसकी भाषा, सब कुछ जानते थे। वो उसके इनसाइडर थे, लेकिन साथ ही अपनी फिलिस्तीनी जड़ों की वजह से वो उसी पश्चिमी नजरिए के शिकार भी थे जिसकी वो बाद में आलोचना करने वाले थे।
अच्छा, मतलब वो खुद महसूस कर चुके थे कि पश्चिम पूर्व को कैसे देखता है।
हाँ, वो जानते थे कि जब पश्चिम पूर्व की बात करता है तो अक्सर कैसी छवि घड़ी जाती है, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति, उनके अपने लोगों को भी तो उसी तरह से देखा और दिखाया गया था।
तो वो एक ही साथ अंदर वाले भी थे और बाहर वाले भी, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है।
जी, और इसी अनोखे नजरिए से, इसी अनुभव से निकली है ओरिएंटलिज्म। ये किताब पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज यानी उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन के क्षेत्र में एक फाउंडेशनल टेक्स्ट, एक तरह से मील का पत्थर बन गई।
चलिए अब किताब पर आते हैं। ये ओरिएंटलिज्म आखिर है क्या चीज, अगर आसान शब्दों में समझना हो तो?
आसान शब्दों में कहें तो सईद ये तर्क देते हैं कि पश्चिम यानी यूरोप और अमेरिका ने सदियों से ओरिएंट यानी पूर्व की जो समझ बनाई है।
पूर्व मतलब यहाँ मुख्य रूप से मध्य पूर्व, एशिया, उत्तरी अफ्रीका, है ना?
हाँ, बिल्कुल। तो पश्चिम ने इनकी जो समझ बनाई है वो कोई सच्ची, वस्तुनिष्ठ या तटस्थ समझ नहीं है।
तो फिर क्या है?
सईद कहते हैं कि ये पश्चिम का अपना गढ़ा हुआ एक विचार है, एक तरह की कल्पना है जो असल में पूर्वाग्रहों से भरी हुई है। ये सिर्फ कुछ बिखरी हुई जानकारियां नहीं है बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है।
सिस्टम? कैसा सिस्टम?
सोचने का एक तरीका, लिखने का एक तरीका, अकादमिक अध्ययन का एक तरीका, और यहां तक कि जैसा आपने पहले कहा, राज करने का भी एक तरीका। इसी पूरे जटिल सिस्टम को, इस पूरे विमर्श को सईद ओरिएंटलिज्म का नाम देते हैं।
अच्छा, और ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्या खासियत है इसकी?
इसकी एक बड़ी खासियत है अन्य बनाना, यानी अदरिंग। पश्चिम ने पूर्व को हमेशा अपने से ठीक उल्टा या कमतर दिखाकर परिभाषित किया।
जैसे कि?
जैसे अगर पश्चिम खुद को तर्कसंगत मानता है तो पूर्व को वो भावना प्रधान, अतार्किक बताता है। अगर पश्चिम आधुनिक है तो पूर्व पिछड़ा हुआ, रहस्यमयी है। अगर पश्चिम पुरुषोचित है तो पूर्व स्त्रैण या कामुक है।
समझ रही हूँ, मतलब अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए दूसरे के खास, अक्सर नकारात्मक छवि बनाना।
बिल्कुल, और ये छवि सिर्फ अकादमिक किताबों तक ही सीमित नहीं रही। सईद दिखाते हैं कि कैसे कवियों ने, उपन्यासकारों ने, यात्रियों ने, इतिहासकारों ने, यहाँ तक कि राजनेताओं ने भी अपने लेखन के जरिए पूर्व की इसी स्टीरियोटाइप छवि को बनाने और फैलाने में मदद की।
और ये छवि असलियत से ज्यादा पश्चिम की अपनी जरूरतों या कल्पनाओं को दर्शाती थी।
हाँ, सईद का यही तर्क है। ये पश्चिम की अपनी इच्छाओं, अपनी चिंताओं, अपने डर का एक आईना ज्यादा थी, बजाय इसके कि पूर्व असल में कैसा है।
और इसमें जैसा हमने पहले कहा, शक्ति का पहलू बहुत अहम है।
शक्ति का पहलू, इसको थोड़ा और समझाएंगे।
सईद फुको के विचारों से प्रभावित होकर कहते हैं कि ज्ञान कभी निर्दोष नहीं होता। पूर्व के बारे में ज्ञान इकट्ठा करने की ये जो पूरी परियोजना थी, ये असल में उस पर नियंत्रण करने की इच्छा और क्षमता से गहराई से जुड़ी हुई थी। जानना एक तरह से ताकत हासिल करना था।
मतलब जानकारी जुटाना सिर्फ अकादमिक काम नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद भी साध रहा था। जी हाँ, इस ज्ञान ने उपनिवेशवाद को एक तरह का बौद्धिक आधार, एक औचित्य, जस्टिफिकेशन भी दिया। हम उन्हें समझते हैं, इसलिए हम उन पर राज करने के हकदार हैं। कुछ ऐसी सोच इसके पीछे काम कर रही थी।
उसका कोई खास उदाहरण देते हैं सईद?
हाँ, एक बहुत बड़ा उदाहरण वो नेपोलियन के 1798 के मिस्र हमले का देते हैं। ये सिर्फ एक फौजी हमला नहीं था।
अच्छा, और क्या था?
नेपोलियन अपने साथ सिर्फ सिपाही नहीं ले गया था, बल्कि वैज्ञानिकों, भाषाविदों, कलाकारों, विद्वानों की एक पूरी फौज ले गया था। उनका मिशन था मिस्र को जानना, उसका नक्शा बनाना, उसकी हर चीज का दस्तावेजीकरण करना।
ओहो, यानी मिस्र पर सिर्फ जमीन का कब्जा नहीं, बल्कि एक तरह से दिमागी या बौद्धिक कब्जा करने की भी कोशिश थी।
एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। और इस अभियान के नतीजे में एक बहुत बड़ा, कई वॉल्यूम का ग्रंथ तैयार हुआ, डिस्क्रिप्शन रिल इजिप्ट।
डिस्क्रिप्शन रिल इजिप्ट,
सईद दिखाते हैं कि कैसे इस ज्ञान ने मिस्र को एक जीती जागती बदलती हुई सभ्यता से एक स्थिर म्यूजियम में रखी जाने वाली चीज में बदल दिया। एक ऐसी चीज जिसकी व्याख्या अब सिर्फ पश्चिमी विशेषज्ञ ही कर सकते थे। यहां ज्ञान और शक्ति का रिश्ता एकदम खुलकर सामने आ जाता है।
ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। तो किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि पश्चिम ने पूर्व के बारे में क्या गलत सोचा, बल्कि ये भी कि वो सोच बनी कैसे, उसका ढांचा क्या था और उसका मकसद क्या था।
जी बिल्कुल।
चलिए इस ढांचे को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सईद और किन मुख्य तरीकों या अवधारणाओं की बात करते हैं जिनसे ये ओरिएंटलिज्म काम करता है?
कई अवधारणाएं हैं। एक तो हमने अन्य बनाने की बात की, फिर एक और अहम चीज है जिसे सईद पाठ्य रवैया, टेक्स्चुअल एटीट्यूड कहते हैं।
पाठ्य रवैया, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है किताबों में लिखी बातों पर, यानी टेक्स्ट पर, असलियत से ज्यादा भरोसा करना। सईद दिखाते हैं कि कई पश्चिमी यात्री, विद्वान या अधिकारी, जब पूर्व जाते थे तो वो वहां जो देखते थे उसे सीधे सीधे अनुभव करने के बजाय उन पुरानी किताबों और विचारों के चश्मे से देखते थे जो उन्होंने पहले से पढ़ रखे थे।
अच्छा, तो मतलब अगर किताब में लिखा है कि ओरिएंटल लोग आलसी होते हैं, तो वो वहां जाकर आलसी लोगों को ही ढूंढेंगे या उसी तरह से व्याख्या करेंगे?
हाँ, काफी हद तक यही होता था। असलियत चाहे कुछ भी हो, टेक्स्ट में लिखी बात ज्यादा सच मानी जाती थी। वो अनुभव को टेक्स्ट के हिसाब से फिट करने की कोशिश करते थे, ना कि टेक्स्ट को अनुभव के हिसाब से बदलने की।
तो एक तरह से लिखा हुआ शब्द असलियत पर हावी हो गया।
जी, ओरिएंट की जो छवि किताबों और यात्रा वृत्तांतों में बन गई थी वो ज्यादा वास्तविक लगने लगी, बजाय वहां के लोगों के असल जटिल जीवन के। सईद इसे एक बंद आत्मसंदर्भित सिस्टम की तरह देखते हैं।
बंद सिस्टम, कैसे?
ऐसे कि पश्चिमी विद्वान और लेखक अक्सर एक दूसरे की लिखी बातों का ही हवाला देते रहते थे। एक ने जो स्टीरियोटाइप बनाया, दूसरे ने उसे दोहराया, तीसरे ने उसे और पक्का कर दिया। इससे वही पुरानी धारणाएं बार बार पुख्ता होती चली गईं।
और इसमें पूर्व के लोगों की अपनी आवाज कहां थी?
यही तो अहम बात है। सईद कहते हैं कि ओरिएंटलिज्म ने ओरिएंटल्स को अपने बारे में खुद बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया। उनकी आवाज को दबा दिया गया, उनकी जगह पश्चिमी विशेषज्ञ ने ले ली, जो ये बताता था कि असली पूर्व क्या है और कैसा है।
सईद दो और खास तरह के ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट। वो क्या है? ये थोड़ा जटिल लगता है।
हाँ, ये थोड़ा समझने वाला है। देखिए, लेटेंट ओरिएंटलिज्म का मतलब है वो गहरी, बुनियादी, लगभग अचेतन, अनकॉन्शियस मान्यताएं और पूर्वाग्रह जो पूर्व के बारे में पश्चिम में रचे बसे हुए हैं।
जैसे कि
पूर्व मूल रूप से अलग है, वो समय के साथ बदलता नहीं, टाइमलेस। वो रहस्यमयी है, खतरनाक है, तर्क से ज्यादा भावनाओं से चलता है, स्त्रीण है, वगैरह वगैरह। ये धारणाएं ज्यादा बदलती नहीं हैं, ये एक तरह से स्थायी हैं, पर्दे के पीछे हमेशा मौजूद रहती हैं।
ठीक है, ये हुआ लेटेंट। और मैनिफेस्ट?
मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म वो है जो इन लेटेंट धारणाओं के आधार पर खुलकर सामने आता है। ये वो स्पष्ट बयान, सिद्धांत, नीतियां, विश्लेषण होते हैं जो पूर्व के बारे में दिए जाते हैं।
तो ये बदल सकता है?
हाँ, मैनिफेस्ट ओरिएंटलिज्म समय और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से बदल सकता है। जैसे कभी पश्चिम पूर्व को एक रोमांटिक, जादुई, एक्जॉटिक जगह की तरह देख सकता है, जैसा 19वीं सदी के कुछ साहित्य में दिखता है, तो कभी उसे एक बड़े खतरे, एक कट्टरपंथी ताकत के रूप में देख सकता है, जैसा शायद बाद के दौर में हुआ।
लेकिन दोनों ही सूरतों में
सईद के मुताबिक वो गहरी लेटेंट वाली धारणाएं ही पीछे काम कर रही होती हैं। ऊपरी रंग रूप बदल जाता है, लेकिन अंदरूनी ढांचा वही रहता है।
अच्छा, तो मतलब ऊपरी तौर पर बातें बदल सकती हैं, नीतियां बदल सकती हैं, लेकिन वो जो अंदरूनी सोच है पूर्व के बारे में, वो कमोवेश वैसी ही बनी रहती है।
सईद का तर्क काफी हद तक यही है, और वो ये भी दिखाते हैं कि ये चीज सिर्फ 18वीं और 19वीं सदी के यूरोपीय उपनिवेशवाद तक ही सीमित नहीं रही।
मतलब ये बाद में भी जारी रहा?
हाँ, वो अपनी किताब के आखिरी हिस्से में दिखाते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना, तो ओरिएंटलिज्म का केंद्र एक तरह से ब्रिटेन और फ्रांस से हटकर अमेरिका में शिफ्ट हो गया।
लेकिन जाहिर है उसका रूप बदला होगा।
बिल्कुल, रूप बदला। पुराने जमाने के जो भाषा शास्त्री या क्लासिकल स्कॉलर थे, उनकी जगह अब समाज वैज्ञानिकों, राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों और एरिया स्टडीज के एक्सपर्ट्स ने ले ली।
एरिया स्टडीज एक्सपर्ट्स ये कौन होते हैं?
ये वो लोग होते हैं जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र जैसे मध्य पूर्व या दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ माने जाते हैं। और सईद दिखाते हैं कि एक्सपर्ट्स अक्सर सरकार की विदेश नीति, इंटेलिजेंस एजेंसियों, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और मीडिया को सलाह देते हैं।
ओह, तो यहाँ ज्ञान का रिश्ता सत्ता से और भी सीधा हो गया।
हाँ, सईद अमेरिकी ओरिएंटलिज्म की कड़ी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये ज्यादा अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट, ज्यादा नीति केंद्रित, पॉलिसी ओरिएंटेड हो गया, और इसका फोकस काफी हद तक अरब दुनिया और इस्लाम पर केंद्रित हो गया।
किस तरह से?
सईद के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद, खासकर अरब इसराइल संघर्ष के संदर्भ में, अमेरिकी मीडिया और कुछ अकादमिक हलकों ने अरबों और मुसलमानों की एक खास नकारात्मक छवि घड़ी।
कैसी छवि?
उन्हें अक्सर स्वाभाविक रूप से हिंसक, आधुनिकता विरोधी, तर्कहीन और पश्चिमी हितों के लिए खतरा बताया गया। तेल के लालची शेख या फिर कट्टरपंथी आतंकवादी, ये स्टीरियोटाइप्स बहुत आम हो गए हैं। सईद कहते हैं कि ये पुराने ओरिएंटलिस्ट ट्रोप्स के ही नए आधुनिक रूप थे, जिन्हें अब विशेषज्ञ विश्लेषण और समाज विज्ञान का जामा पहना दिया गया था।
ये तो काफी गंभीर विश्लेषण है, और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।
बिल्कुल, इसीलिए ये किताब इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस किताब से निकलने वाले सबसे मुख्य संदेश या निष्कर्ष क्या होंगे? 3-4 सबसे अहम बातें।
मेरे ख्याल से पहली और सबसे अहम बात है अन्य का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ द अदर। सईद ये उजागर करते हैं कि ओरिएंट कोई प्राकृतिक या भौगोलिक सच्चाई से ज्यादा पश्चिम द्वारा निर्मित एक विचार, एक अवधारणा है। इसे पश्चिम ने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने विपरीत गुणों वाला गढ़ा।
ठीक है, दूसरा
ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। फुको के प्रभाव में सईद जोर देते हैं कि ज्ञान कभी भी मासूम या तटस्थ नहीं होता। पूर्व का अध्ययन करने की पश्चिमी परियोजना उसे नियंत्रित करने, उसे प्रबंधित करने की इच्छा और क्षमता से जुड़ी हुई थी। अकादमिक ज्ञान ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को वैचारिक मजबूती दी।
तीसरा क्या कहेंगे?
तीसरा, पाठ का वास्तविकता पर हावी होना, टेक्स्चुअल अथॉरिटी ओवर रियलिटी। ओरिएंटलिज्म ने एक ऐसा पाठ्य ब्रह्मांड बनाया जो अक्सर जमीनी हकीकत पर भारी पड़ गया। पश्चिमी लोग पूर्व को अक्सर पहले से मौजूद पाठ्य विचारों और स्टीरियोटाइप्स के फिल्टर से ही देखते थे। प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, खुद असलियत से ज्यादा असली बन गया। और चौथा, अमानवीकरण और सारतत्वीकरण, डीह्यूमनाइजेशन एंड एसेंशियलिज्म। ओरिएंटल लोगों के लिए कुछ निश्चित अपरिवर्तनीय विशेषताएं गढ़ दी गई, जैसे वो रहस्यमयी हैं या हिंसक हैं या तर्कहीन हैं। इससे व्यक्ति और संस्कृतियां अपनी जटिलता, विविधता और इंसानियत खो देते हैं। वो सिर्फ स्टीरियोटाइप बन के रह जाते हैं। उन्हें इतिहास बनाने वाला कर्ता या एजेंट नहीं, बल्कि इतिहास की निष्क्रिय वस्तु या पैसिव ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है।
और शायद पांचवा, आत्म प्रतिनिधित्व से इनकार, डिनायल ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन।
हाँ बिल्कुल, ओरिएंटलिज्म ने ओरिएंटल्स को अपने लिए बोलने, अपनी कहानी खुद बताने के अधिकार से वंचित किया। उनकी जगह पश्चिमी विशेषज्ञ ने ले ली, जो प्रामाणिक आवाज होने का दावा करता था। पूर्व की आवाज को हाशिए पर धकेल दिया गया।
ये सारे बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जब हम इन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, कहीं ना कहीं इनके कुछ अंश शायद हम आज भी अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, भारत के संदर्भ में भी।
बिल्कुल कर सकते हैं। सोचिए, मीडिया में अक्सर कैसे किसी खास क्षेत्र या समुदाय की एक घिसी पिटी छवि पेश की जाती है।
हाँ, कई बार ऐसा होता है।
या फिर विकास की बहसों में कैसे कभी कभी पश्चिमी मॉडल को ही एकमात्र सही रास्ता मान लिया जाता है और स्थानीय ज्ञान या जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
सही कहा।
या फिर वो जो औपनिवेशिक मानसिकता की विरासत है कि बाहर से आया विशेषज्ञ हमेशा स्थानीय व्यक्ति से बेहतर जानता होगा, ये सब कहीं ना कहीं उसी ओरिएंटलिस्ट सोच के अलग अलग रूप हो सकते हैं।
ये किताब वाकई हमें अपने आसपास की दुनिया और अपनी खुद की सोच पर भी सवाल उठाने के लिए उकसाती है। कहीं हम भी अनजाने में किसी को स्टीरियोटाइप तो नहीं कर रहे?
यही इसकी ताकत है।
सहीद की किताब में यकीनन कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो बहुत असरदार है, जो दिमाग में रह जाते हैं। कुछ ऐसे विचारों को साझा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि शब्दशः उद्धरण हो, बस उनका सार।
हाँ जरूर। जैसे एक बहुत बुनियादी बात जो वो कहते हैं, उसका सार है कि ओरिएंट लगभग एक यूरोपीय आविष्कार था।
यूरोपीय आविष्कार? हाँ।
मतलब ये कि पूर्व कोई अपने आप में मौजूद चीज नहीं है, बल्कि पश्चिम की कल्पना ने उसे गढ़ा है। वो पश्चिम के लिए लंबे समय से एक ऐसी जगह रहा है जहां वो अपनी कल्पनाओं, अपने डर, अपनी इच्छाओं को प्रोजेक्ट करता आया है और खुद को उसके विपरीत परिभाषित करता आया है।
ये बहुत गहरा विचार है। और कोई?
एक और अहम विचार है कि ऑक्सीडेंट और ओरिएंट के बीच का रिश्ता हमेशा से शक्ति और प्रभुत्व का रिश्ता रहा है। ये इस बात पर जोर देता है कि ओरिएंट का ये जो पूरा निर्माण हुआ, ये शक्ति का प्रदर्शन था। पश्चिम के पास ये ताकत थी कि वो अपनी दृष्टि, अपनी परिभाषा पूर्व पर थोप सके। पूर्व को सक्रिय रूप से ओरिएंटल होने के सांचे में ढाला गया।
मतलब ये कोई बराबरी का आदान प्रदान नहीं था?
बिल्कुल नहीं। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जिसका सार कुछ यूं है कि जब कोई पश्चिमी व्यक्ति ओरिएंट के बारे में पढ़ता है, लिखता है या वहां जाता है, तो वो कभी भी पूरी तरह तटस्थ नहीं होता। वो हमेशा इस एहसास के साथ होता है कि वो एक ऐसी संस्कृति और शक्ति से जुड़ा है जिसके ओरिएंट में अपने हित है, और वो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानता है।
ये तो बहुत पते की बात है। ये हमें याद दिलाता है कि देखने वाले का नजरिया कभी वैक्यूम में नहीं बनता, वो उसकी अपनी स्थिति, उसकी अपनी शक्ति से प्रभावित होता है।
जी हाँ, ये पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की स्थिति पर सवाल उठाता है।
तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इन सब विचारों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? क्या इनका कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है?
बिल्कुल है, और कई स्तरों पर है। सबसे पहले तो, जैसा हमने पहले भी इशारा किया, हम मीडिया का सेवन ज्यादा आलोचनात्मक ढंग से कर सकते हैं।
कैसे?
जब हम समाचार देखें, कोई फिल्म देखें या कोई आर्टिकल पढ़ें, तो हम ध्यान दे सकते हैं। क्या यहाँ किसी पूरे समूह, देश, धर्म, समुदाय को एक ही खांचे में फिट किया जा रहा है? क्या सिर्फ नकारात्मक या एक्जॉटिक चीजों पर ही फोकस है? क्या स्थानीय लोगों की अपनी आवाज, उनके अपने नजरिए को जगह मिल रही है, या सिर्फ भारी विशेषज्ञ ही बोल रहे हैं?
हाँ, ये सवाल पूछना शुरू कर दें तो शायद बहुत कुछ साफ होने लगे। और क्या कर सकते हैं?
हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति पर होने वाली बहसों में इस्तेमाल होने वाली भाषा के प्रति ज्यादा सचेत हो सकते हैं। जब किसी देश या संस्कृति को लगातार खतरा, अतार्किक, पिछड़ा या हमारे मूल्यों के विपरीत बताया जाता है, खासकर किसी सैन्य हस्तक्षेप या कठोर नीति को सही ठहराने के लिए, तो हमें रुककर सोचना चाहिए। कहीं ये पुराने ओरिएंटलिस्ट पूर्वाग्रहों की ही गूंज तो नहीं?
ये बहुत जरूरी है, खासकर आज की दुनिया में। और शायद सबसे मुश्किल काम, अपनी सोच पर ध्यान देना।
हाँ, ये सबसे व्यक्तिगत और शायद सबसे अहम भी है। हम खुद से पूछ सकते हैं, दूसरी संस्कृतियों, दूसरे समुदायों के बारे में मेरी अपनी धारणाएं कहां से आई हैं? क्या वो सुनी सुनाई बातों, मीडिया स्टीरियोटाइप्स पर आधारित हैं, या वास्तविक जानकारी और अनुभव पर? क्या मैं दूसरों की जटिलता और विविधता को स्वीकार करने को तैयार हूँ? थोड़ी बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी।
और दूसरों को बेहतर समझने के लिए एक और काम किया जा सकता है, सीधे उनकी आवाज सुनने की कोशिश करना।
बिल्कुल। बाहरी विशेषज्ञों या मीडिया के फिल्टर पर ही निर्भर रहने के बजाय, हम उन संस्कृतियों के अपने साहित्य को पढ़ें, उनकी फिल्में देखें, उनके संगीत को सुनें, उनके पत्रकारों और विचारकों को पढ़ें। आज के दौर में ये पहले से कहीं ज्यादा मुमकिन है।
सही बात है, इससे हमें शायद ज्यादा प्रामाणिक और बहुआयामी तस्वीर मिल सकती है।
जी, ये हमें उस विशेषज्ञ वाली मानसिकता से बचाता है जिसके बारे में सईद आगाह करते हैं। दूसरों को समझने के लिए सबसे पहले उन्हें सम्मान से सुनना जरूरी है, उन्हें अपनी कहानी खुद बताने का मौका देना जरूरी है, बराबरी के स्तर पर संवाद करना।
तो अंत में इस पूरी गहरी और जरूरी बातचीत से आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर सबसे बड़ा सबक या टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख रही है वो शायद यही है कि प्रतिनिधित्व यानी किसी के बारे में कुछ कहना, लिखना या दिखाना कभी भी एक तटस्थ या मासूम गतिविधि नहीं है। इसमें हमेशा, चाहे हम माने या ना माने, शक्ति का समीकरण शामिल होता है। कौन बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, किस अधिकार से बोल रहा है और किस मकसद से बोल रहा है, ये सवाल हमेशा प्रासंगिक रहते हैं और इन्हें पूछना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब शक्ति का भारी असंतुलन हो।
रुकता, क्रिटिकल सेल्फ अवेयरनेस का महत्व, ये सिर्फ दूसरों की सोच पर सवाल उठाना नहीं है बल्कि अपनी सोच, अपने पूर्वाग्रहों, अपनी स्थिति पर भी लगातार नजर रखना है। ये समझना कि हमारे शब्दों और हमारे निरूपणों का वजन होता है, उनका राजनीतिक और नैतिक असर होता है। सईद की किताब सिर्फ पश्चिम की अकादमिक आलोचना नहीं है बल्कि एक तरह से ज्यादा मानवीय, ज्यादा नैतिक तरीके से दूसरे को जानने और उसके साथ जुड़ने का एक मानवतावादी आह्वान है।
बिल्कुल सही कहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।